कार्तिका इस वक्त हॉस्पिटल में चाइल्ड वार्ड के आगे चहलकदमी कर रही थी। अंदर धैर्य एडमिट था और वो डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी। तो वहीं आहान को कार्तिका के हॉस्पिटल में होने की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। आहान जल्द से जल्द अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच रहा था। कार्तिका की हरकत पर आहान इतना गुस्सा था कि वो खुद नहीं जानता था कि कार्तिका के सामने आने पर वो उसका क्या हश्र करेगा। चाइल्ड वार्ड में एंटर करते हुए आहान ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है कार्तिका। अक्षरा के बुरे मंसूबों को पूरा करने के लिए तुम हमारे करीब आई थी ना, अब तुम्हें इसका जिंदगी भर अफसोस होने वाला है। सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ़ निकलोगी जो अपने भाई बहनों का फ्यूचर दांव पर लगाकर ऐसा कदम उठाओगी। आहान जैसे ही आगे पहुंचा, उसने देखा वहां भीड़ लगी हुई थी। मोंटी भी उसी वक्त वहां पहुंचा था। वहां लगी भीड़ को देखकर आहान ने मोंटी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं आगे जाकर पता करता हूँ, मोंटी ने बोला तो आहान ने उसे रुकने का इशारा किया। आहान खुद आगे जाकर सारा माजरा पता करना चाहता था। जैसे ही भीड़ को साइड में करके आहान आगे पहुंचा तो उसने देखा डॉक्टर नर्स और बाकी स्टाफ को डांट रही थी। वहां आए विजिटर्स भी इकट्ठे होने की वजह से हल्की भीड़ लग गई थी। डॉक्टर ने नर्स को डांटते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो लड़की बच्चे की माँ नहीं थी। एक तो वो उसे इतने बुरे हालातों में यहाँ लेकर आई थी, और जब बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी तब अचानक से वो उसे वहाँ से लेकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और देखो कि वो लड़की कहाँ गई है। डॉक्टर की बात सुनकर आहान के दिल की धड़कनें डर के मारे शोर करने लगी थी। इतनी मुश्किल से पूरा दिन बीतने के बाद वो कार्तिका तक पहुँचा था, और यहाँ तो कार्तिका धैर्य को लेकर फिर से गायब हो चुकी थी। आहान ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर को कार्तिका की फ़ोटो दिखाते हुए कांपती आवाज़ में पूछा, डॉक्टर क्या ये लड़की वही थी जो बच्चे के साथ आई थी? डॉक्टर ने फोटो देखते ही कार्तिका को पहचान लिया था। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ ये वही है, लेकिन इसकी फ़ोटो आपके फ़ोन में क्या कर रही है? क्या आप इस लड़की को जानते हैं? कहीं वो आपकी पत्नी तो नहीं? आहान ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, वो लड़की मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरे बच्चे को हमारे घर से किडनैप करके चली गई है। सुबह से मैं पुलिस के साथ उसे ढूंढ रहा हूँ। उसके यहाँ होने का हिंट मिला तो पता चला कि वो यहाँ से गायब हो गई। डॉक्टर क्या आप लोग ऐसे ही किसी का ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं? आज आपकी लापरवाही की वजह से मेरा बेटा फिर से मुझसे दूर हो गया। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से डॉक्टर के पास आई। आयुष ने आहान को साइड में ले जाकर शांत किया। पुलिस ने डॉक्टर को कार्तिका की तस्वीर भी दिखाई थी तो उन्होंने कार्तिका को पहचान लिया था। डॉक्टर ने मायूसी भरे स्वर में कहा, मुझे ज़रा भी आइडिया होता कि वो लड़की एक बच्चे को किडनैप करके यहाँ पर आई है तो मैं कभी उसका साथ नहीं देती। सच कहूँ तो हमारा ध्यान माँ बाप से ज़्यादा पेशेंट पर और उनकी कंडीशन पर होता है, और बच्चे की हालत सच में बहुत ख़राब थी। अगर वो उसे सही वक्त पर यहाँ नहीं लेकर आती तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर ने जो भी बताया था उसे सुनने के बाद तो जैसे आहान की दुनिया रुक सी गई थी। उसने चाहत को वादा किया था कि वो धैर्य को सही सलामत उसके पास लेकर आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। आहान जल्दी से डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर क्या हुआ है मेरे बच्चे को? वो बहुत छोटा है, वो खतरे से बाहर तो है ना? अगर ट्रीटमेंट पूरी तरह मिल पाता तो शायद बच्चे को कोई खतरा नहीं होता। माँ का दूध नहीं मिलने की वजह से उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी। शायद उस लड़की ने उसे प्रोसेस्ड मिल्क पिलाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ था कि बच्चा लंबे समय से भूखा था। ऊपर से उसे तेज बुखार भी था जो इनिशियल निमोनिया के सिम्टम्स थे। डॉक्टर ने धैर्य की कंडीशन बताई, जिसे सुनने के बाद तो आहान और आयुष दोनों और भी घबरा गए थे। एक तो पहले से ही वो धैर्य के गायब होने से परेशान थे, ऊपर से वो इतना बीमार भी था। शायद चाहत को इस बारे में पता चलता तो वो तो रो रोकर पागल हो जाती। आयुष ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार आहान को इतना लाचार देखा था। आहान आगे कुछ सुनने को तैयार नहीं था और वो खोई हुई हालत में बाहर की तरफ जाने लगा। आयुष दौड़कर उसके पीछे आ रहा था। आयुष ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, भाई भाई प्लीज़ रुक जाइए, हम धैर्य को ढूंढ लेंगे, भाभी अभी सोई हुई है तो हमें टाइम मिल जाएगा। आहान आयुष की तरफ पलटा। आयुष ने देखा आहान की आंखें डबडबा रही थी। आयुष कुछ कहता उससे पहले आहान उसके गले लग गया था। सुबह से बिना कुछ खाए पिए वो धैर्य को ढूंढ रहा था, और जब थोड़ा बहुत हिंट मिला तो इतने करीब आकर उसने धैर्य को फिर से खो दिया था। इन सब की वजह से आहान काफी ब्रोकन फील कर रहा था। आज से पहले कभी आयुष ने आहान को इस कदर मजबूत और टूटा हुआ नहीं देखा था। आयुष ने आहान को सहलाते हुए भारी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेता हूँ और मेरी वजह से आप भी उसके चक्कर में फंस गए। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं थक गया हूँ इन सबसे। जिंदगी के स्ट्रगल्स हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक दुश्मन को रास्ते से हटाओ तो दूसरा पैदा हो जाता है, आहान ने थके स्वर में कहा।
आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए और कुछ खा लीजिए, तब तक मैं ढूंढता हूँ हमारे धैर्य को, आयुष ने आहान से अलग होकर कहा। आहान ने गहरी सांस ली और नामे सिर हिलाकर कहा, मैं कैसे कुछ खा पी सकता हूँ जबकि मेरा बेटा भूख से इस कदर बेहाल है कि उसे हॉस्पिटल तक लाना पड़ा। अगर वो उसे लेकर गई थी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो मेरे बच्चे का ख्याल रखे। आयुष की नजरें झुक गई थी और उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे कार्तिका से प्यार क्यों होना था, ये बात उसे मन ही मन खाई जा रही थी। इससे अच्छा होता कि वो कभी कार्तिका से मिलता ही नहीं। आहान और आयुष बात कर ही रहे थे तभी पुलिस वहां पहुंची और उसने आहान से कहा, हमने डॉक्टर का स्टेटमेंट ले लिया है, फुटेज में देखने पर भी कुछ खास पता नहीं चल रहा। अचानक लड़की को एक कॉल आया और वो बच्चे को लेकर पिछले रास्ते से चली गई। आहान ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसे कुछ भी करके धैर्य को ढूंढना था, उसके बिना वो चाहत का सामना तक नहीं कर सकता था। आहान अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तभी उसके कदम लड़खड़ाने लगे, उसे चक्कर आ रहे थे। आहान गिरता उससे पहले आयुष ने उसे संभाल लिया था। उसकी हालत को समझते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर ओबेरॉय आपको कुछ देर घर जाकर आराम करना चाहिए, अगर हमें कोई भी अपडेट मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपके इस तरह इधर उधर घूमने से बच्चा नहीं मिल जाएगा। आहान का आदमी मोंटी भी उसकी बात से सहमत था, उसने आहान से कहा, ये सही कह रहे हैं सर, आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए, फिर मैं और हमारे आदमी भी आपके बच्चे को ढूंढने में लगे हुए हैं। आयुष ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये ठीक कह रहे हैं भाई, आपको थोड़ी देर आराम की जरूरत है, अगर आप ऐसे ही घूमते रहे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप धैर्य को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। आहान चुप था, जैसे वो उनकी बातें सुनकर भी ना सुन रहा हो। आयुष ने उन सबको उनके काम पर लगने को कहा और फिर आहान का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर ले गया। आहान के विला पर जैसे मातम छाया हुआ हो, बिल्कुल शांति थी, चाहत सोई हुई थी। आहान वहां पहुंचा तो शिवानी ने उससे कहा, तनु के इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गई है, क्या बच्चे की कोई खबर नहीं है?
आहान के बजाय आयुष ने जवाब देते हुए कहा, मॉम प्लीज आप भाई के लिए थोड़ा खाना ले आइए। आहान की हालत ठीक नहीं लग रही थी, ये देखकर शिवानी को और भी बुरा लग रहा था। वो जल्दी से खाना लेकर आई और अपने हाथों से आहान को खाना खिला रही थी। आहान कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, वो चुपचाप शिवानी के हाथ से खाना खा रहा था। आहान उनकी हिम्मत था, उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर उनकी हिम्मत भी कहीं ना कहीं टूटने लगी थी। खाना हो जाने के बाद शिवानी ने नम आंखों से आयुष की तरफ देखा। आयुष ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और फिर उसने आहान को उठाकर उसे अपने कमरे में ले जाकर लिटा दिया था। रूम में आते ही आहान की नज़र अपने बगल में लेटी हुई चाहत पर पड़ी, जिसे मानो इस वक्त किसी चीज़ का होश ना हो। उसे देखते ही आहान की आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया डॉल, आहान ने धीमी भावों का आवाज़ में कहा। उसने चाहत को अपनी बाहों में लिया और आंखें बंद की। थके होने की वजह से कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में था। इतनी परेशानी में आहान के दिमाग से ये बात निकल गई थी कि कार्तिका अक्षरा से जुड़ी हुई है तो उसे अक्षरा के यहाँ जाकर देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आयुष नीचे आया, तब शिवानी उसे देखते ही गले लग गई। वो रोते हुए बोली, आखिर क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, मैंने आहान को इस तरह टूटा हुआ कभी नहीं देखी, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो वो खुद को संभाल लेता है। इसी बात की तकलीफ मुझे हो रही है मॉम, और खुद पर गुस्सा भी आ रहा है, सब मेरी वजह से हो रहा है, आयुष ने भारी आवाज में कहा। शिवानी आयुष से अलग हुई और कहा, हमारा बच्चा ठीक तो होगा ना, मुझे बहुत डर लग रहा है आयुष, ना केवल धैर्य के लिए, मुझे आहान और चाहत के रिश्ते के लिए भी डर लग रहा है, इन सब की वजह से उनके रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, हम उसे ढूंढ लेंगे, आयुष ने सख्ती से कहा, और वो बाहर जाने को हुआ तभी शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुमने भी पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा बहुत खाना खा लो, इससे हिम्मत मिलेगी, शिवानी ने उसे रोकते हुए कहा। शिवानी ने फिर जबरदस्ती आयुष को थोड़ा बहुत खाना खिलाया, उसके बाद आयुष वहां से चला गया था। शिवानी उसके बाद सोने से पहले मंदिर गई और पूरी रात धैर्य की सेहत के लिए दुआ मांगती रही। अगली सुबह 5 बजे के करीब आहान की नींद टूटी, वो कसमसाते हुए उठा तो उसके दिमाग में सबसे पहले धैर्य का ख्याल आया। इसी के साथ आहान एक झटके से बिस्तर से खड़ा हुआ। आहान के सिर में तेज दर्द हो रहा था, पर उससे ज्यादा जरूरी उसके लिए धैर्य को ढूंढना था। मैं सो कैसे सकता हूँ, मुझे धैर्य को ढूंढना था, आहान मन ही मन बड़बड़ाकर बोला। जाने से पहले उसने एक नज़र चाहत को देखने के लिए बेड पर डाली तो चाहत वहां से गायब थी। आहान की जिंदगी की ये सबसे बुरी सुबह थी, जब कल सुबह नींद टूटने पर धैर्य उनके पास नहीं था तो आज चाहत गायब थी। आहान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। कहीं डॉल अकेले ही धैर्य को ढूंढने के लिए तो नहीं चली गई, ओ माय गॉड, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था और मैं खुद सो गया, आहान ने हड़बड़ाकर कहा और जल्दी से दौड़कर नीचे गया। नीचे कोई नहीं था,
मंदिर से घंटी बजने की आवाज आ रही थी तो आहान समझ गया कि शिवानी पूरी रात वहां पूजा कर रही होगी। इससे पहले कि आहान सिक्योरिटी गार्ड की क्लास लगाने के लिए बाहर जाता, उसका मोबाइल बजा। ये अक्षरा का कॉल था। उसने कॉल पर कहा, क्या हुआ, तुम्हारी प्यारी डॉल तुम्हें मिल नहीं रही? अक्षरा की आवाज सुनते ही आहान के गुस्से में मुट्ठी कस गई थी। पहले उसके दिमाग से भले ही ये ख्याल निकल गया हो कि कार्तिका अक्षरा से रिलेटेड है, पर फिर से याद आने पर आहान गुस्से में तेज आवाज में बोला, अगर मेरी डॉल और बच्चे को कुछ हुआ तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अक्षरा गोयनका। पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने गलती की, लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अरे अरे बेबी, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं यहाँ सब कुछ प्यार से करने के लिए सोच रही हूँ। तुम्हारी डॉल भी यहीं है और तुम्हारा प्यारा बच्चा भी, बस कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। आ जाओ यहाँ, क्योंकि यहीं आना है तुम्हें, अक्षरा ने ईविल स्माइल करते हुए कहा और फिर कॉल काट दिया। अक्षरा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और नजरें सामने की तरफ थीं, जहां चाहत धैर्य को प्यार से सहलाते हुए उसे दूध पिला रही थी। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर मानो चाहत की सांस में सांस आई हो। वहीं अक्षरा के पास साथ में कार्पिका खड़ी हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर डर के भाव थे। उसने रिक्वेस्टिंग वॉइस में कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम मुझे और मेरे भाई बहनों को जाने दीजिए। अक्षरा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और जवाब में कहा, मेरा काम अभी हुआ नहीं है और मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गई है। अब जब तक आहान मेरी बात नहीं मानता, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। मिस्टर ओबेरॉय यहाँ आ रहे हैं, फिर आप चाहत और उसके बच्चे को क्यों नहीं जाने दे रही हैं? कार्तिका ने हैरानी से पूछा। चाहत अपने बच्चों के मिलने की खुशी में भले ही सब कुछ भूल गई हो, लेकिन इस वक्त वो एक कमरे में बंद थी। अक्षरा के इरादे ठीक नहीं थे, उसने चाहत को बेवजह ही बंदी नहीं बनाया था। अक्षरा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और रहस्यमयी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे इन्हें कहीं और भेजने का इरादा है। अभी तो आहान ओबेरॉय से बदला लेने की शुरुआत हुई है, इतनी आसानी से थोड़ी ना इसे जाने दूंगी। अक्षरा की बातें सुनकर कार्तिका को घबराहट होने लगी। उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अक्षरा ने कार्तिका को इग्नोर किया और फिर अपने घर की सिक्योरिटी टाइट करवा ली ताकि आहान के अलावा वहां कोई ना आ सके। पूरी तैयारी हो जाने के बाद वहां पर एक और शख्स पहुंचा। उसे देखते ही अक्षरा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरा साथ देंगे। खैर, एक से भले दो, चलिए फिर प्लान पर काम करते हैं। जब एक मंजिल एक ही हो तो कारवां बड़ा करने में कोई नुकसान नहीं है। क्या लगता है कौन आया है अक्षरा का साथ देने के लिए? वैसे एक और पार्ट बचा हुआ है, फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी। चाहती तो इसे और लंबा लिख सकती हूँ, लेकिन ये स्टोरी लगभग एक साल से चल रही है। ऊपर से इसकी वजह से कोई नई स्टोरी भी नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से इसे एक प्रॉपर एंडिंग देकर खत्म करते हैं और नई कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, फाइनल पार्ट पर मिलते हैं।